ध्येयम् सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
राम 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 राम। 95 वर्ष पहले का एक पत्र है, संवत 1977 के अंदर लिखा हुआ, 95 वर्ष। श्री गंगाधर जी मोर, आप लिखी सत्संग कमती हुआ, जको कारण देर हो रही छे सोई ठीक छे, इस माफिक आपका सत्संग माय विश्वास छे, सो फिर सत्संग के लिए विशेष चेष्टा क्यों नहीं करी जावे। भगवान के नाम का जप का अभ्यास बलात्कार सेति करने की चेष्टा करनी चाहे, पाप नष्ट हो जावे। बलपूर्वक राम 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 मन लागे नहीं लागे, बलपूर्वक करनो, पाप नष्ट हो जावे। जना उत्कंठा हो न सके छे, भजन सत्संग में त्रुटि होवे जकी आपकी पुरुषार्थ की त्रुटि छे, प्रारब्ध की नहीं छे। भजन सत्संग ज्यादा होयो, भगवान माय प्रेम पूर्ण निष्काम होया सेती भजन सत्संग हो न सके छे। फिर संसार माय प्रेम रह न सके नहीं, श्रद्धा विश्वास पूर्ण तो श्रद्धा विश्वास प्रेम पूर्ण तो साधन तेजी होने से ती होवे। साधन तेज करने के लिए भजन सत्संग करने की विशेष कोशिश करनी चाहे, बलात्कार सेति इस माय पुरुषार्थी प्रधान छे। मनमोहन प्यारे भगवान की कभी भगवान को कभी चित्त सेति नहीं बिसारनो चाहे, ऐसे नारायण देव को सर्व समय अपने पास ही समझनो चाहे। और के लिखो जावे, मिंसरवदी 12 संवत 1977। दूसरा आपको पत्र कसेरा जी का नायो जी को उत्तर, सादर हरिस्मरण। पत्र मिला श्री राम जी की बाल झांकी मानसांक में छाप दी गई है, शेष के लेख दिए उसी दिन आपका पत्र मिल गया, एक दिन भी देरी से मिलता तो छापने में अड़चन होती। अब देखिए बहुत खास बात, आपने स्टेशन पर कहा था उसके अनुसार नाम जब प्रारंभ कर दिया होगा, भगवत प्राप्ति में जितने साधन हैं उनमें दो ही ऐसे साधन हैं जो केवल क्रिया मात्र से परम लाभ प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। भगवत प्राप्ति में जितने साधन हैं उनमें केवल दो ही साधन ऐसे हैं जो क्रिया की प्रधानता से भी परम लाभ देते हैं। एक तो भगवान का नाम का जप और दूसरा अच्छे संत महापुरुषों का संग। ये दो बातें, भाव कुभाव जान अनजान किसी प्रकार से भी प्राप्त हो जावे, पर ये दो तो लाभकारी ही हैं। इसमें मनुष्य को, इसमें श्री भगवान की प्राप्ति तो सभी मनुष्यों को अत्यंत सुलभ है। भगवान नाम की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनमें केवल दो ही ऐसे हैं जो केवल क्रिया मात्र से परम लाभ प्रदान करते हैं, एक भगवान नाम का जप और दूसरा महात्मा पुरुषों का संग। भाव कुभाव जान अनजान किसी प्रकार से भी प्राप्त हो जावे, पर ये तो लाभकारी ही है। इसमें श्री भगवान नाम की प्राप्ति तो सभी मनुष्यों को अत्यंत सुलभ है, बहुत ही अधिक लाभ देने वाली बात है। महात्माओं का संग तो मिल जाए कहना ही क्या है, भगवान नाम की प्राप्ति तो सभी के लिए सुलभ है। बहुत सुलभ होने के कारण, अब देखो मार्की की बात है, बहुत सुलभ होने के कारण अपने को बुद्धिमान मानने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। क्या है नाम ऐसे लोग करते हैं, ऐसे कहे कि बकरी है पाला खाती तो यूं 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 करती है, ऐसे ही आप राम 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 क्या होता है तो बकरी पालो खावे जो कर, ऐसा लोगों ने कहा है। तो कहते बहुत ही सुलभ होने के कारण ही अपने को बुद्धिमान मानने वाले लोग वंचित रह जाते हैं। कितनी सुंदर बात है, भगवान नाम में अकल लगानी नहीं चाहिए। अब चलते हैं बड़ा पत्र, गोविंद भवन कलकत्ता, सन 4/8/38 रात्रि में पत्र लिखा है सेठ जी ने। भाई हनुमान प्रसाद जी, भाई जी को लिखा रात्रि में बैठ कर, कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, वे ही दो चार बातें रटी रटाई है। पंडित जी ने कोई नई बात कहने की बात कही थी, बात तो पुरानी है मगर वो आचरण में आ जाए तो नई दिखती है। क्या बात है, बात तो पुरानी है पर अगर आचरण में आ जाए तो नई है, इस दृष्टि से नई है। बैद जी ने कहा था भगवान की बात बार बार कहनी चाहिए, यह नित्य नई है। कहने का तात्पर्य, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस बात पर यदि ध्यान दे तो पता लगेगा कि अधिकांश लोग भूल में ही डूबे हुए हैं। जो चीज मनुष्य जीवन में पाने की है उसे पाने का साधन छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना ये बहुत बड़ी भारी भूल है। इस भूल को हम सभी कर रहे हैं, विचार नहीं करते। हमारे घर के आदमी मर गए, मित्र मर गए, और जो मरते हैं उनका सब कुछ यहीं रह जाता है। ये अपनी आंखों से देखते हैं, बुद्धि से समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि जिनका एक एक कण पर स्वामित्व था, मरते ही सारी चीजें पराई हो जाती हैं। उसका मालकाना कहां गया? इस बात को पीछे वालों को खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। ये आत्मा सब देखता है और फिर भी ये वासना करता है, वासना करके मरता है और फिर प्रेत हो जाता है, और प्रेत होने पर वो देखता है कि अरे मेरी चीज दी, देखो ये काम में ले रहे हैं, मैं कुछ रोक नहीं पा रहा हूं, मेरी चीज क्यों ये काम में ले रहे हैं। ऐसे वो तड़फड़ाता है और उसके दुख का कोई पारावार नहीं रहता। वह पहले भी दुखी था, मरने के बाद में भी दुखी होता है, और उन चीजों को देखते 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 वो नरक में धकेल दिया जाता है और फिर दुख पाता है। ये जीवन हमको ऐसे तुच्छ काम के लिए मिला था क्या? ये भगवत प्राप्ति के लिए हमें मिला है? संसार के भोगों में हम मन लगाए हुए कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। इस संसार में जो हमारा मोह हो रहा है उसको हम ही त्यागेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। जिनमें मोह है उन वस्तुओं को दूसरे लोग भोगेंगे, परंतु हमारे मोह के त्याग में कोई सहायता नहीं करेगा। ये काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए मोह को त्याग दे, अथवा संसार में जो संसार को देख रहे हैं उसे देखना छोड़कर भगवान को देखें। यूं तो जंगल भी संसार, ये घर भी संसार, ये छूटता है इस बात को जानने से कि संसार को जिस रूप में हम देखते हैं वह ठीक नहीं है, ये भूल है। हम इसको कहते हुए सुनते हुए जाने क्यों भूल जाते हैं? मैं अपनी बात कहता हूं, कहते कहते कई बार ये बात मन में आ जाती है कि लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है या नहीं। मैं कुछ विचार नहीं कर सका। सुनने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि रुचि है, इनको कहना चाहिए, समझना चाहिए, अपने भी लाभ, लोगों की बात। परंतु व्यवहार उनका देखता हूं तो मन में लगता है कि मेरी बात इनको जची नहीं, तभी तो इनका व्यवहार सुधरा नहीं। लोगों को रुचे, लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे महात्मा माने, अगर इस तरह की कोई बात मेरे मन में छिपी रहती है तो मैं जो कुछ कहता हूं इसका अर्थ है वास्तव में मैं करता नहीं हूं, वैसा आचरण लाता नहीं हूं। मेरे मन में कहीं कहीं विषय छिपे रहते हैं। उपदेशक जो होता है वो जो कुछ कहता है सबसे पहले वे स्वयं करें, खूब उसको अजमाए, स्वयं के अंदर से पूरा संदेह मिटे, तब जाकर उसको कहने का अधिकार है, नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं होती। उसका आचरण से, उसकी क्रिया से एक ठोस प्रभाव पड़ता है। संतों की, महात्माओं की बड़ी दया है, वे दया के परवश होकर कहते हैं, खेत ठीक है या नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, इस बात की परवाह न करके बादल तो बरसता ही है, उर्वरा भूमि होती वो उप जाती है और दूसरी नहीं, इसमें मैं क्या करें। हम सुनते बहुत हैं, कहते बहुत हैं, अगर उसका हजारवां हिस्सा भी करने लगे तो बड़ा काम हो सकता है। मेरे मित्र मोहम्मद हाफिज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने लेख लिखा है, भगवान की गीता में प्रतिज्ञाएं हैं, अगर हम उनकी आज्ञा माने तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दे। योगक्षेम का जिम्मा भगवान लेते हैं, उसका जो अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये भगवान सस्ते में मिलने का उपाय बताते हैं। किसको? जो अनन्य चेता है। अब विचार करो, हम रात दिन चिंतन तो करते ही है ना, पर सोचो किसका करते हो? संसार का। भगवान से भी संसार का काम पूरा करने की प्रार्थना करते हैं, यह नहीं कहते हैं कि हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ो, एक तरफ करो, विषय क्यों चाहो, पर हमारा लक्ष्य है विषय भोग, विषय प्राप्ति, और उसको हम भगवान की भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं। कितना ऊंचा साधन और क्या उपलब्धि, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमें उस भगवान की भक्ति के मूल में विषय लेना चाहते हैं, क्या करें? वास्तव में भगवान की भक्ति का मूल कौन जाने, क्या जाने। प्रह्लाद सा कोई आस्तिक हो, देखो तलवार लेकर पिता खड़ा है, मारना चाहता है, कहता है बता तेरे भगवान कहां है। वो कहता है, है मौत सिर पर है, जरा से मैं मारने की तैयारी हो रही है प्रह्लाद की। प्रह्लाद कहता है कि वो तो है, कहां है? हिरण्यकश्यप तलवार खंभे पर मारता है और भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम दुख में, विपत्ति में भगवान को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सब जगह भगवान को नहीं देखते। दुख पैदा ही इसीलिए होता है, अरे क्या करे, ये आ गया, बुखार आ गया, बीमारी आ गई, बीमारी में ही भगवान है, बीमारी में ही भगवान है। सब जगह भगवान को नहीं देखते, इसलिए दुख की उत्पत्ति होती है, विपत्ति की उत्पत्ति होती है। विष्णु पुराण में आती है, संडामर्क ने एक कृत्या पैदा की, प्रह्लाद की तरफ प्रहार किया, प्रह्लाद को तो मार नहीं सकी, उल्टे गुरु पुत्रों को ही मार दिया। बदले में प्रहलाद ने क्या कहा, हे भगवान जो भगवान मेरे में है वही इनमें हो तो ये मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए। कितना सुंदर भाव है, मारने वाले के प्रति कैसा सुंदर भाव, जहर का प्याला देने वाले के प्रति भी यह भाव। मां कयाधु के हाथ में जहर का प्याला है, एक तरफ तो पति आदेश देता है कि तेरे पुत्र को जहर पिला प्रहलाद को, और वो जहर का प्याला लेकर पुत्र की तरफ जाती है तो रो पड़ती है, मेरा पुत्र, आंखों से तड़ तड़ आंसू पड़ते हैं। एक तरफ पति की आज्ञा है और दूसरी तरफ प्रहलाद जैसे पुत्र के प्रति प्रेम है। अब मां कैसे पिलावे, किस मां की ऐसी हिम्मत हो, नन्ना सा बच्चा दौड़ा दौड़ा प्रहलाद आता है और पूछता है, मां मां इस कटोरे में क्या है, मां इस क्या है, मुझे भी दे। मचलता है, मां क्या कहे, पति के सामने कहे कि बेटा इसमें जहर है मत पियो, तो पति नाराज, पिला दे तो ये बच्चा है इसको क्या पता जहर है इसमें, मर जाएगा। उसकी मां बड़ी घबरा गई, रोने लगी और वो जहर का प्याला भगवान को अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया और कहा, हे भगवान ऐसी स्थिति में आप ही बचाओ, मैं क्या करूं, अबला हूं, क्या करूं। पति की आज्ञा है और प्रहलाद जैसा पुत्र इसको मैं कैसे क्या करूं, मांग रहा है, मुंह से सीधा शब्द निकला, बेटा ये भगवान का चरणामृत है, ओ मां मुझे दे, लाओ मां मुझे दे। मां के हाथ से लेकर गट 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 करके प्रहलाद पी गया, जहर अमृत हो गया। हिरण्यकश्यप ताकता रह गया, प्रहलाद का तेज बढ़ गया, प्रहलाद का मुखमंडल दाम चमकने लगा। फिर प्रहलाद ने पिता को मां को दोनों को प्रणाम किया, चला गया। इधर उसने प्रहलाद को आग में डालने के लिए आदेश दिया कि जगती हुई आग में इसको डाल दो, आग में डाले तो आग में गर्मी नहीं। चिल्लाता है प्रहलाद, अरे आग में गर्मी नहीं है, अरे ये आग तो जलाती नहीं है, ये तो बहुत ठंडी ठंडी हवा है। लोगों ने जाकर आग के पास हाथ लगाया तो गर्म लगे। हिरण्यकश्यप देखते ही क्या हो रहा है, आप लोगों को गर्म लगती है, ये कहता है बहुत शीतल है, ठंडी हवा आ रही है, आग कहां है, क्या बात है, तो ये क्या है, ये भगवान के कारण ही आग में आग पना था वो समाप्त हो गया, जहर में जहर पना था खत्म हो गया, भगवान ने खींच लिया आग की गर्मी को, खींच लिया प्रहलाद के लिए जहर का जहरपना खींच लिया। फिर क्या है, केनोपनिषद में कथा आती है कि वायु तिनका नहीं उड़ा सकी और अग्नि उसको जला नहीं सका। प्रहलाद को सब जगह भगवान दिखते हैं, सच्ची बात है, कहीं बनावट नहीं है, भगवान सब जगह है। नहीं नहीं, भगवान ही है और कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। हां जगत में है तो एक चीज है, क्या? ये दुख है। इसीलिए भगवद गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, जगत में मृत्यु है, अशाश्वत है और दुखालय है। जाओ पकड़ो जगत को, दुख मिलेगा। भगवान है या नहीं इस बात में श्रद्धा करनी चाहिए, भगवान है, परंतु दुख है कि नहीं ये तो सभी जानते हैं, सबका अनुभव है। भगवान श्रद्धा के विषय है और जगत में दुख है ये सबका अनुभव का विषय। अनुभव बड़ा आराम से देखो, आप विचार करो, बड़े से बड़ा आदमी जितना बड़ा आप समझते हो वो सुखी है क्या? उनके जलन नहीं होती? नए नए प्रकार के दुख होते हैं। एक बहुत बड़ा धनी आदमी है परंतु उससे भी बड़ा कोई धनी आ जाए तो उसका हृदय जलने लग जाएगा। ये जलन कैसे मिटे? एक को 1 लाख और दूसरे को 4 लाख पैदा होता है तो वो 1 लाख वाला मानता है कि क्या करूं, मेरे 3 लाख का घाटा लग गया। तेरे व्यापार में तूने 1 लाख कमाया, 3 लाख का घाटा कैसे लगा? वो कहता उसको 4 लाख मिल गए, 3 लाख का उसको लाभ हो गया, वो मेरे घाटा हो गया। ये कोई बात है? राजा बादशाह सम्राट सब दुखी है। दुख मिटता है दुख के केंद्र से बाहर निकलने पर। ये जगत भगवनमय है, देखने लगे तो सारा दुख छूट जाए। इसको भगवान का स्वरूप समझे तो कोई दुख न रहे। जब तक हम जगत के घेरे में हैं यह दुख छूटेगा नहीं। क्यों? कि वहां हमने भगवान को नहीं देखा। जहां आपको भगवान की भावना होगी वहां दुख नहीं होगा। जहां दुख है वहां भगवान नहीं, वहां भगवान है वहां दुख नहीं। ये बात तो विश्वास करने की है कि भगवान ही है। इस बात को मानते ही सारा अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा और यह विश्वास उत्तम संघ से प्राप्त होता है। ज्यादा संसारियों के संसर्ग में, विषयों के संसर्ग में ये विश्वास नष्ट हो जाता है। संघ अपना अच्छा रखना चाहिए। मनुष्य का मन है ये सारे संस्कारों का समूह है। सारे विषयों का चित्र इस मन में अंकित है। यह एक छोटा सा बाइस्कोप है, बाइस्कोप का फिल्म है। बाइस्कोप सिनेमा ही है। इस छोटे से मन में इतने संस्कार भरे पड़े हैं, सब जमा हुए, कब कब के कितने जन्मों के संस्कार। छोटा सा मन, जो कुछ हम देख सुन रहे हैं उनके संस्कार मन पर पूर्ण रूप से जमा होते चले जाते हैं। अगर हम अच्छे करते हैं तो अच्छे संस्कार जमा होंगे और पुराने संस्कार दबते जाएंगे। प्रह्लाद अपने साथियों को उपदेश करते हैं। साथियों ने पूछा तुमने ये कहां से सीखा? वह बोला मां के पेट में सीखा, मैं गर्भ में था, इंद्र मेरी मां को ले जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिले, वे बोले इसके पेट में अर्थात गर्भ में भगत है, छोड़ो इसको, इंद्र घबरा गए, नारद जी मेरी मां को आश्रम में ले गए, प्रह्लाद की मां को बेटी कहा, बेटी समझ के उसको आश्रय दिया, रोज उसको भगवत गुण सुनाते थे। प्रह्लाद गर्भ में था, उन गुणों के असर से इतना भारी भक्त हो गया। अच्छी बातें बार बार सुनो, केवल सुनो ही नहीं, मनन करते रहे, इनके संस्कार अच्छे बनते जाएंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छे का चक्र बनता जाएगा, अच्छी अच्छी बातों का। ध्यान देने की बातें हैं, पहली भगवान के नाम गुण का जाप चिंतन मनन, दूसरा भगवान के गुणों का श्रवण, संत महापुरुषों से, महात्माओं से, संत वाणी से भगवान के गुण सुने, वाणी से भगवान के नाम का जप कीर्तन, ये दो बातें कलयुग में अगर हम करें तो फिर बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। जितनी जल्दी हम चाहेंगे उतनी जल्दी हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर हम आज भगवान से मिलना चाहें तो भगवान कल होने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान को कहीं आना थोड़ा ही है। जिसने जब चाहा उसने तब पाया, जिसे भगवान के पाने की सच्ची ख्वाहिश हो वो करे, और नहीं तो थोड़ी परीक्षा करके ही देखो। परीक्षा करना अच्छा नहीं है, लेकिन अनन्य मन से आप परीक्षा करके ही देख लो। बस इतनी है कि संसार के विषयों से तो हटना पड़ेगा, यहां से मालकीपना हटा करके और मुनिमी करनी पड़ेगी, भगवान के मुनीम होना पड़ेगा। अरे भगवान की चीज भगवान को भगवान की मान लो, और है क्या यहां मुनिमी और मालकीपने की बात। सबके मालिक भगवान, और भगवान की चीज भगवान को दे दो। कितना बड़ा सेठ का काम है, कितनी फैक्ट्री चलती है, कितने लोग काम करते हैं, और मुनीम कितने कितने रुपयों को जोड़ता रहता है, परंतु अंत में तो उसको अपनी देनगी तो मिलती है। सब कुछ हाथ में है पर वो देनगी मिलती है, महीना ही तो मिलता है। ऐसे ही हमको जो भगवान भोजन जल वस्त्र निवास ये सब देते हैं, और सबके मालिक भगवान हैं, तो मुनिम होने में क्या आपत्ति है। मैं फिर कहता हूं, भगवान का मिलना बड़ा सहज है, भगवान की चाहना सहज नहीं है। चाहना में देरी होती है, लोग उसको भगवान में देरी मान लेते हैं। ना कुछ चाहना होती है उसको वे बहुत बड़ी चाहना मान लेते हैं। इतनी हिम्मत आए, सब कुछ भगवान को देने की तैयारी हो जाए, फिर देखो। भक्ति जब वास्तव में पैदा होती है वह कोई सहज बात नहीं है, यह उनकी दया का प्रभाव है। जिस भक्ति से भगवान वश में होते हैं वह भक्ति तो शायद हमारी कल्पना की बात ही नहीं है। इतना कितनी विचित्र भक्ति होगी। सबका त्याग करें, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाचिनी हृदि वर्तते। जब तक ये स्प्रिया भुक्ति और कामना ये पिशाचिनी हृदय में बैठी है, तब तक भगवान के लिए जगह खाली नहीं है, कहां बैठेंगे। अपने हृदय को टटोल के देखना चाहिए। जगत के मामूली पदार्थ के लिए भगवान को भूल जाते हैं। भक्ति को वहां पैदा होने की फुर्सत ही नहीं है। जब तक मोक्ष तक की इच्छा का त्याग नहीं होता तब तक भक्ति नहीं आ सकती। मोक्ष की भी इच्छा न करे फिर भक्ति पैदा होती है, और भक्ति भी वो हो कि उस भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते रहे, उसकी चरण धूलि को सिर पर लेते हैं। भक्ति में भगवान को वश में होना पड़ता है। भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति देते नहीं है। भक्ति के आचार्य गोपी जनों के समान कोई नहीं हुआ, भगवान ऋणी हो गए। तुम्हारे प्रेम से हम बिक गए गोपियों, बिक गए। तुम लोगों ने हमें मोल ले लिया, हम बिक गए। भगवान इस प्रकार गोपियों के सामने नाचते रहते हैं, गोपियों के सामने गरज करते हैं, मुझे मक्खन दे। गोपियों के घरों में जा जा करके मक्खन खाने के लिए मचलते हैं, और गोपियां उनको मक्खन देना नहीं चाहती है और भगवान लेना चाहते हैं। इन बातों को मामूली मत समझो, विचित्र भक्ति है। गोपियों ने स्वप्न में नहीं चाहा कि हमारी मुक्ति हो, उनको तो मुक्ति नमक की तरह खारी लगती है। मुक्ति हुई नौन सो खारी लागे, जौलो तो है नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तो तू बैठकर ब्रह्म को विचार ले। यदि नंद कुमार की आंख से आंख तुम्हारी नहीं मिली तो तुम मुक्ति का विचार करो, ब्रह्म का विचार करो। लेकिन जिस दिन उसकी आंख में आंख मिल जाएगी उस दिन तुम्हारा ब्रह्म मुक्ति सब पीछे पड़ जाएंगे। जनक जी ने विश्वामित्र जी के पास दोनों बालकों को देखा, रो पड़े। विश्वामित्र से बोले, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि विलोकित अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। मेरे मन में तो सदा ही बैरागी बैराग्य रहता है, स्वाभाविक। मैं आज तक किसी को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा मन नहीं खींचा कि ये सुंदर है कि ये कैसा है, मन जाता ही नहीं। इनको देख करके मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया और चकित हो गया। मेरे मन को देखकर चकित हो रहा हूं, मेरा मन इनमें क्यों गया? जनक जी स्वयं समझ नहीं सके और रो पड़े। भगवान के नाम रूप झांकी गुण इन पर मोक्ष का तिरस्कार कर देते हैं, नहीं चाहिए मोक्ष, उसमें भक्ति पैदा होती है। भक्ति हो तो मैं यहां आपको उपदेश न दूं, मेरा नाम सुनकर आप भक्त बन जाए, ऐसी यदि मेरे में भक्ति होती तो। मेरे में भक्ति हो तो मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता, मेरा नाम सुनते ही आपके अंदर भक्ति पैदा हो सकती है। एक आदमी किसी को कोई गलत बोलता है तो तुरंत उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, कोई किसी का अपमान करता है तुरंत उसमें क्रोध पैदा होता है, गाली बोलने पर अपमान बोलने पर एकदम क्रोध आता है। ऐसे मेरी बात सुनते तो तुरंत आपके मन में भक्ति पैदा होनी चाहिए, परंतु मैं ऐसा हूं नहीं, मेरे अंदर ऐसे गुण होते तो ये जरूर होता है। अगर मैं जगत में स्थित हूं तो आप हो जाए, भक्त के रोम रोम से प्रकाश निकलता है। जो जगत को प्रकाशित करता रहता है, वह जिस मार्ग से निकलता है वो प्रवाह बन जाता है। क्या टेलीफोन करने जा रहे हो क्या? अरे रखो यार, उपदेश न दूं, मेरा नाम सुनकर आप भगत बन जाएं। जैसे किसी आदमी की गाली गलौज अपमान की बात सुनते ही उसमें क्रोध आता है, कोई पीठ पीछे भी आकर कहे कि वो आदमी आपको ऐसा बोल रहा था तो क्रोध आ जाए, ऐसा मेरा नाम सुनकर आप भगत हो जाते, पर मेरे में भक्ति है नहीं, करूं क्या? भक्त के रोम रोम से प्रकाश निकलता है। जो जगत को प्रकाशित करता रहता है, वह जिस मार्ग से निकलता है वो प्रवाह बन जाता है। भक्त तो वो चिंतामणि है, वह मोक्ष की कीमत देने पर भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है, कोई बाजार की चीज नहीं है। चिंतामणि बिकती नहीं है, प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम कोई बाड़ी में पैदा नहीं होता है। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और प्रेम कहीं बाजार में हाट में माने दुकान पर बिकता नहीं है। भक्ति में सब कुछ दे डालना पड़ता है, यह कलयुग का महात्म्य है। जो नाम लेने वाले भी भक्त कहलाते हैं, संतों की बड़ी दया है। ऐसे ही ज्ञान भी बड़ा कठिन है, इतना सस्ता नहीं है। मित्रों, भगवान का नाम लिए जाओ, भगवान का नाम सारी नियत को ठीक कर देगा। अगर भक्त बनना है तो तैयार हो जाओ, और जगत के धक्के ही खाने हो तो फिर आप जानो। हम तो ऐसा नहीं बोलते, हम तो यही कहते हैं कि सब कुछ छोड़ने को भक्ति मिली प्रह्लाद को, मीरा को, ध्रुव को। भक्त को तो बस भक्ति की चाह चाहिए, प्रेमी बस प्रेम चाहता है और कुछ नहीं चाहता। श्रीमन्नारायण नारायण।